Okay, so brothers and sisters, before we pray, like your teacher in primary school, I have a surprise quiz for you.
और भाइयों और बहनों, इससे पहले कि प्रार्थना करें, तो आपके जैसे प्राइमरी के टीचर होते थे और वो अचानक से छोटा सा इम्तिहान ले लेते थे, तो मैं भी लेना चाहूँगा.
And when my teacher would give me a surprise quiz, I would always be very fearful that I did not know the answer.
जब मुझे मेरे टीचर जो हैं सरप्राइज क्विज लेते थे, तो अक्सर डर लगता था कि क्या पूछेंगे.
But I think that all of you will make 100% on this quiz.
लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद आप सबको 100% अंक मिलेंगे.
Who is the Bible mainly about?
बाइबल मुख्यतः किसके बारे में है?
Yeah. Now, more specifically, it's about something concerning Jesus. What are those two things?
अब वो दो बातें बताइए जिसके बारे में बाइबल पूरा बात करती है या मुख्यतः उसी के ऊपर इर्द गिर्द घूमती है.
Yeah. The gospel and the glory of Jesus. And when we say gospel, we don't mean just any message. We mean the death, burial, and resurrection of Jesus.
और जब हम कहते हैं यीशु मसीह की मृत्यु सुसमाचार के बारे में, तो उसका मतलब है यीशु मसीह की मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका जी उठना.
Okay, and the reason we were laying that foundation is because, well, let me make a confession.
और हम इसलिए ये अपना जो ग्राउंड या धरातल जमीन बना रहे हैं ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें.
I told you that before I was converted, I regularly attended church.
और इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब मैं मेरा कन्वर्जन हुआ या मैं सच में मसीह में आ गया, तो मैं चर्च में जाता था नित्य.
But after I became a Christian, I realized that many of the sermons I heard did not talk about Jesus.
और मैंने बहुत सारे सर्मन या प्रचार सुने, लेकिन उन प्रचारों में यीशु मसीह नहीं था.
They might have talked about good moral living. Don't cheat or lie, be faithful, responsible.
और वो जो प्रचार थे इन्होंने सुने, वो ऐसे प्रचार थे जिसमें लोगों को बताया गया था कि जिम्मेदार बनो, विश्वास योग्य बनो, झूठ मत बोलो, जो नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, उनको पूरा करो.
Sermons about tithing or marriage or
और ऐसे
सर्मन
थे जो दसवां अंश कैसे देना है, शादी में कैसे खुशहाल रहना है, इन चीजों के बारे में.
Now, while all of those topics are touched on in the Bible, they're all in relationship to the gospel and glory of Jesus.
और ये जितने जो साधारण प्रचार हैं जो मैंने सुने थे, ये सारे यीशु मसीह से थोड़ा थोड़ा टच होते हैं.
So I have a feeling that Satan would actually be very happy if we talk a lot about the Bible, just so long as we do not talk about the gospel and glory of Jesus.
और शैतान शायद बहुत खुश होता होगा कि हम दूसरी बातों के बारे में ज्यादा बात करते हैं और यीशु मसीह का सुसमाचार छोड़ देते हैं या उसको छोटा सा बताते हैं.
So to continue laying the foundation, let us look at just a couple of more passages before we turn our attention to John chapter 1.
तो और थोड़ा सा देखेंगे इसी लुका के 24 अध्याय में से, ताकि हम यूहन्ना के पहले अध्याय में जाएं.
So before we go back to John, let's look at 2 Corinthians chapter 4.
तो दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय देखेंगे.
2 Corinthians chapter 4 verses 3 through 6.
और 3 से 6 पद, पहला दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 3 से 6.
Okay, let's read this passage.
पीछे से पढ़ दीजिए कोई.
यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह पर्दा उनके लिए पड़ा है जिनका विनाश हो रहा है, उन अविनाशियों की बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधकार कर दिया है, अंधकार कर दिया कि वे परमेश्वर के प्रति अर्थात मसीह के उसके मन सुसमाचार की बुद्धि को न देख सकें.
छह तक.
हम तो अपने
3-6. Okay. So let's just imagine in my culture, when someone gets married, the bride wears a veil over her face.
और हमारे संस्कृति में जो है जब कोई शादी करती है लड़की दुल्हन तो वो एक क्या बोलते हैं बेला बेल बेल तो वो पहनती है
yeah. Okay. And this passage says that every person, man, woman, boy, girl, every person has a veil over their face.
और बाइबल बताती है कि जो जवान बड़े बूढ़े सब जो हैं उनके ऊपर में एक पर्दा पड़ा हुआ है.
Okay, in verse 3, it talks about the unbelieving, people who have not yet been converted, not Christians.
और तीन पद में जो है बताया गया है कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं और जो क्रिश्चियन नहीं है.
Yeah, it's verse 4. It says there's a veil blinding the mind of the unbeliever.
और यहां पर वो पर्दे के बारे में बताया गया है कि वो लोगों को अंधा कर देता है.
Okay. The passage tells us two things about this veil.
और ये जो passage है, ये गद्यांश है, ये दो चीजें बता रहा है.
Okay. The first thing it tells us.
और पहली चीज ये बताता है.
Okay. Verse 4.
चार में.
Is that the veil is put there by someone.
और वो ये बताता है कि जो पर्दा है वो किसी के द्वारा लगाया गया है.
Who has put the veil over the mind of an unbeliever?
वो अविश्वासियों के दिमाग पर वो पर्दा किसने लगाया है?
In the verse, his name, or his, he's referred to as
the God of this Ishwar.
Yeah.
The God of this world.
Yeah, the God of this world. That's a reference to our enemy. That's a reference to Satan. Okay. But we're also told that the veil is put there by Satan because he does not want us to see something.
और ये जो पर्दा है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो हमें नहीं हम नहीं चाहता कि हम कुछ देख सकें.
Okay. Notice in verse 3 that these are people who are perishing. The people who cannot see.
और ये वो लोग हैं जो देख नहीं सकते और जो जिनका विनाश हो रहा है.
Okay. What can they not see? What are they prevented from seeing?
कौन सी चीज है जो जिसको उन्हें देखने के लिए मना किया जा रहा है?
Verse 4.
चार पद में देख लीजिए.
The light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Okay, so as long as you read your Bible, as long as you go to church, maybe even get baptized, do a lot of nice things, Satan will not be upset.
और जब तक आप पवित्र बाइबल की बातें नहीं करते या वचन नहीं पढ़ते और तो तब तक शैतान को कुछ नहीं होता, वो बौदर नहीं होता, उसको मुश्किल नहीं होती कुछ भी.
He doesn't want to stop you from being religious. He wants to stop you from seeing the glory of God in the face of Christ.
वो जो है आप धार्मिक बने रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप परमेश्वर के बात देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो चिंतित हो जाता है.
Verse 4 says the gospel of the glory of Christ.
और ये जो है चार पद में जो बताया गया है, मसीह का तेजोमय सुसमाचार की ज्योति.
So don't answer aloud, but I want to ask you, have you seen the glory of Christ? Have you seen the gospel of Christ?
क्या आप लोगों ने मसीह के सुसमाचार की ज्योति को देखा है, देख चुके हैं?
Okay. Think about the first day of creation.
और पहले दिन जो सृष्टि बनाई गई उसके बारे में आप सोचिए.
How did God create everything?
कैसे परमेश्वर ने सारे चीजों को बनाया?
By what kind of energy or yeah, he spoke the creation into existence. Let there be light.
मुंह से बोला और ज्योति हो जाए.
Yeah, verse 6 says light shines out of darkness.
और 6 पद कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है.
Verse 6 also says God said let light shine.
और ये 6 पद ये भी कहता है कि परमेश्वर चमके.
So that's a reference to creation when God spoke the creation into existence.
और ये जो है रेफरेंस है परमेश्वर की सृष्टि के बारे में जो बनाया गया था.
We're told that that same God has shined a different light.
और हमें बताया गया है कि वही परमेश्वर ने अपनी ज्योति को चमकाया है अलग तरीके से.
Verse 6 says the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.
और 6 पद बताता है कि परमेश्वर ने जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके वही है जो हमारे हृदयों में चमका है कि हमें मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान की ज्योति दे.
So verse 4 and verse 6 give us a picture of a real Christian.
तो 4 पद और 6 पद जो है एक सच्चा मसीह कौन होता है उसकी तस्वीर देते हैं.
Not someone who has Bible knowledge, but someone who finds Christ to be glorious, wonderful.
एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है जो जिसको बाइबल का ज्ञान हो परंतु जिसने सच में मसीह को पा लिया हो.
Verse 4 and verse 6 talk about someone who sees the glory of God in the person of Jesus Christ.
और 4 और 6 पद जो है वो यीशु मसीह जो व्यक्तित्व है उसमें ज्योति देखते हैं.
Hebrews says that Jesus is the radiance of the glory of God.
और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो मसीह है वो परमेश्वर की आभा है या ज्योति है.
He's the one that shines out God's own glory.
और वो जो है स्वयं परमेश्वर की महिमा चमकाता है.
And salvation is when God removes the veil and lets you see Christ for who he is.
और उद्धार का मतलब ये होता है कि जब परमेश्वर आपके सामने से उस पर्दे को हटा देता है ताकि आप उद्धार को देख सकें.
And anyone who has tasted from that fountain will long for more.
और जिस भी व्यक्ति ने उस स्रोत में से चखा है तो वो और भी ज्यादा उसको चखना चाहेगा.
See, a true Christian is not someone who's saved by Jesus and then lives in their own power.
और जो सच्चा मसीह होता है वो ये नहीं होता जो मसीह के द्वारा बचाया गया है और अपने ही ताकत में जीता है.
The Christian is someone who sees God's glory in Christ, sees God's glory in the gospel, and then continues to desire to know him more.
और सच्चा मसीह वो होता है जो मसीह की ज्योति को देखता है, सोचता है और ज्यादा उसी के बारे में चलता रहता है, उसी के बारे में देखता है.
The Christian is someone who has an appetite, a hunger for Christ Jesus.
और सच्चा मसीह वो होगा जो मसीह के लिए भूखा हो, जिसके अंदर एक भूख उमड़ती हो.
I didn't say a Christian is someone who wants to go to heaven when they die.
हम ऐसे क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा है कि जिसको सिर्फ ये इच्छा है कि जब वो मरे तो केवल स्वर्ग में जाए.
Or someone who wants to escape from hell.
और केवल एक ऐसा मसीह जो केवल नरक की आग से बचना चाहता है, बस उसी की बात नहीं कर रहे हैं.
Almost everyone in the world would say, I would prefer to go to heaven instead of hell.
और अगर आप पूरी दुनिया में कहीं भी पूछेंगे तो शायद सभी लोग यही कहेंगे कि मैं तो नरक की अग्नि में नहीं जाना चाहता, केवल स्वर्ग में जाना चाहूंगा.
But the reason a Christian wants to be in heaven is because Christ is there.
Amen. और जो सच्चा मसीह है, एक सच्चा मसीह स्वर्ग में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहां पर मसीह है, सच्चा परमेश्वर है.
So I want to ask again, do you have an appetite for Christ?
तो मैं दोबारा से आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर में मसीह के लिए वो भूख है?
A hunger for him, for who he is.
वो भूख क्या आपके अंदर है कि वो कौन है, मसीह के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं?
Do you desire to know him more?
क्या आप उसको और अधिक जानना चाहते हैं?
Look just in the previous chapter, 2 Corinthians chapter 3.
और दूसरों कुरंथियों के 3 अध्याय में देखिए जो हम 4 देखा है,
Again, we find this language of a veil being in front of someone's face.
और फिर भी यहाँ पर भी हम उस पर्दे के बारे में पाते हैं जो किसी के मुंह के आगे लगाया गया है.
First, we find the example of Moses, who had a veil over his face.
और पहले हमें उदाहरण मिलता है मूसा का जिसके सामने वो पर्दा था.
Then we find the example of Israel, who has a veil over their heart.
फिर हम इज़राइल का उदाहरण पाते हैं जिसके हृदय के सामने वो पर्दा था.
Let's read verses 12 to 18.
और 12 से 18 पद तक हम लोग पढ़ेंगे. पढ़ दीजिए 12 से 18 तीन में से.
इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याह के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इज़राइली उस घटने वाले फेस के अंत को न देखें. परंतु वे मनमती हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ता रहता है पर वह मसीह में उठ जाता है. आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा. प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ सब स्वतंत्रता है. परंतु जब हम सबके उधेड़े चेहरे से प्रभु का पर्दा इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं.
थैंक यू ब्रदर. ओके, नोटिस दैट वर्स 14 टेल्स अस that the people's mind was hardened.
और पद 14 यहाँ पर बताता है कि लोग जो लोगों के मन हैं वो कठोर हो गए थे.
And notice that it tells us that when they read the old covenant, when they read the old testament.
और जब वो पुरानी वाचा को पढ़ते थे.
It's like the veil is between them and the Bible.
तो वो एक पर्दा है उनके बीच में और बाइबल के बीच में.
They can't understand the old covenant, the old testament, because of the veil.
और वो पर्दे के कारण से पुरानी वाचा को नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं.
But verse 14 explains how the veil is taken away.
लेकिन 14 पद ये भी बताता है कि वो किस तरीके से पर्दा उठा लिया गया.
How is that veil lifted?
कैसे वो पर्दा उठा लिया गया?
In Christ. Yeah, but notice we know for sure that we're talking about the Old Testament because of verse 15.
और हम जो है 15 पद के अनुसार.
Verse 15 speaks about the writings of Moses.
और 15 पद जो है मूसा के बारे में बताती है, मूसा के लेख के बारे में बताती है.
And then Paul says, actually, even until his own day, even until that very day at the reading of Moses.
और ये बताती है कि आज तक या उस दिन तक.
So people were going to church or to the synagogue and they were reading the Bible.
तो लोग जो है आराधनालय में जा रहे थे और वो बाइबल पढ़ते थे.
But verse 15 says the veil still remains over their heart.
लेकिन 15 पद बताता है कि जो पर्दा है वो उनके दिलों पर तब तक भी पड़ा हुआ था.
And just to make sure we understand, Paul explains again in verse 16 how the veil is taken away.
और 16 पद में हम ध्यान से देख लें कि वो पर्दा किस तरीके से हटा लिया जाता है.
How does he say it in verse 16?
कैसे बताता है उस पर्दे के बारे में?
Yeah, to the Lord. When a person turns to the Lord, the veil is taken away.
कब वो पर्दा हटा लिया जाता है एक आदमी के आगे से? जब लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, फिरते हैं.
And in the context, we simply need to go back to verse 14 to know that we're talking about the Lord Jesus Christ, not just a generic God. We're talking about turning to Christ to remove the veil.
और 14 पद के अनुसार जो है हम यहाँ परमेश्वर के साधारण रूप के बारे में नहीं केवल परंतु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं.
So I want to ask again, have you turned to Christ? Have you met God in Christ? And had the veil taken away.
तो सवाल उठता है, प्रश्न उठता है कि क्या आपको मसीह मिल चुका है, मिल गया है, क्या आपके सामने से वो पर्दा हट गया है?
This verse actually teaches us that it's not until conversion that a person can truly understand the Bible.
और ये पद हमें बताता है कि जब हमारा परिवर्तन होता है तब तक भी हम उससे पहले तक हम समझ नहीं सकते बाइबल को.
But when someone meets God in Christ, when they're saved, when they're born again, then the veil is gone and they can see the whole Bible.
लेकिन जब मसीह में कोई आदमी आ जाता है, प्रभु को समझ लेता है, उसका पर्दा हट जाता है, तो वो संपूर्ण बाइबल को समझने लगता है.
And it's like the whole Bible, Moses, the Old Covenant, the New Testament, all of it points us back to the gospel and glory of Christ.
और ऐसा लगता है कि संपूर्ण बाइबल मूसा की व्यवस्था जो है हमें संपूर्ण सुसमाचार की ओर लेके जाती है या उस ओर हमें दिखाती है.
Verse 18.
18 पद.
There's an illustration about a mirror.
और यहाँ पर दर्पण का उदाहरण दिया हुआ है शीशे का.
And in the day of the Apostle Paul, he didn't have fancy mirrors like we have today.
और अपोस्टल पौलुस प्रेरित के समय में जो है बढ़िया बढ़िया शीशे या दर्पण नहीं होते थे.
The best thing he would have had would be something kind of like a piece of broken glass.
और जो सबसे अच्छा शीशा शायद दर्पण उसके पास था वो शायद टूटा हुआ आज के समय का टूटा हुआ दर्पण होगा.
And do you remember in Paul's ministry, he was often persecuted. In one place he was beaten, in another place he was stoned.
और आपको याद होगा कि पौलुस के जीवन में जो है वो अक्सर पीटा जाता था, पत्थर मारे जाते थे.
He writes
और पिटाई होती थी.
He writes to us about receiving lashes.
और वो हमें बताता है कि उसको किस तरीके से बैंतों से पीटा गया और उसके दाग पड़ गए.
In another place he tells us about having poor eyesight. Maybe that was a result of the stones.
और दूसरी जगह में वो बताता है कि मेरी उसकी आंख कितनी धुंधली पड़ गई थी, कमजोर पड़ गई थी. हो सकता है शायद वो जब उसको पत्थरवा किया गया था तब उसको कमी आ गई हो.
In fact, on his very first missionary journey,
और उसके जो प्रथम मिशनरी यात्रा थी उसमें
they stoned him so badly that they thought he was dead.
उन लोगों ने उसको इतना ज्यादा पत्थर मारे कि उन्होंने सोचा था कि वो शायद मर गया.
The Bible tells us that they dragged his body outside of the city and laid him on the side of the road.
और बाइबल बताती है कि उन्होंने उसकी उसके शरीर को जो है खींचते हुए ले चले वो शहर के बाहर.
And when the Lord had strengthened him, he got up and went to the next city to preach the gospel.
और जब परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी उस पिटाई में के बावजूद भी, घसीटे जाने के बावजूद भी, वो उठा और दूसरे नगर में प्रचार करने के लिए गया.
And maybe before he arrived in the next city, he wanted to make sure that his appearance was okay.
और शायद जब वो दूसरे नगर में आया तो वो निश्चित हो जाना चाहता था कि वो ठीक सा दिखाई दे रहा है.
So out of his bag, he might have pulled a piece of glass and used it like a mirror.
तो शायद उसने अपने पीछे से वो शीशा लिया होगा और दर्पण के जैसे इस्तेमाल किया होगा.
And in order to get a good reflection, he would have to focus very carefully.
और अच्छे तरीके से देखने के लिए उसने जो है उसको ध्यान लगाया होगा उस पर.
Now look at verse 18.
और 18 पद को देखिए आप.
It says with an unveiled face.
और 18 पद में लिखा हुआ कि खुला चेहरा.
We are looking or beholding like in a mirror.
और अब हम सब जो है खुले चेहरे से जैसे दर्पण में देख रहे हैं.
That's a reference to careful gazing, focusing, diligently looking.
और इस पद का मतलब है जब हम ध्यान से देखते हैं, एकटक निहारते हैं.
But notice what we're looking at.
और यहाँ पर देखिए.
What does the verse say?
और ये पद क्या बताता है? 18 पद.
परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं.
Yeah. So we're looking like we would look intently in a mirror. We're looking at the glory of the Lord.
और जैसे हम शीशे में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो उसी तरीके से वही भावना लेकर के हम मसीह की तरफ देखें.
But the Bible says in the verse, as we look at the glory of the Lord, God changes us into His likeness.
और बाइबल हमें बताती है कि वो अपनी समानता में हमें अंश अंश करके बदलता है.
Imagine a little caterpillar.
और जो छोटी सी कैटरपिलर क्या बोलते हैं उसको
हिंदी व्हाट्स दैट वर्ड
इल्ली जैसी होती है.
ओके, हाउ डज दैट इंसेक्ट चेंज इनटू अ बटरफ्लाई.
तो कैसे वो इल्ली प्यूपा जो है वो आखिर में जाके तितली बन जाता है.
हाउ डज इट हैपन.
कैसे वो होता है. इट चेंजेस.
हाउ. How does it happen?
कोई बता सकता है?
It goes into this secret place. It goes into what we call a cocoon.
और वो कोकून में अंदर में उसमें जाती है अपने उसमें.
Okay, and inside that cocoon, we cannot see what's happening, but God sees.
और उसके अंदर में हमें दिखाई नहीं देता कि वो परिवर्तन कैसे होता है, लेकिन परमेश्वर देखता है.
It goes in one insect, it comes out a different insect.
और जब वो अंदर कुकुन में जाता है तो वो एक अलग कीड़ा होता है, लेकिन जब बाहर आता है तो वो एक अलग किस्म का कीड़ा होता है, अलग किस्म का प्राणी होता है.
The scientific word for that change is metamorphosis.
और जो साइंटिफिक वर्ड है उसके लिए वो
metamorphosis.
Okay.
That is the Greek word in this verse.
तो वही शब्द है जो यहाँ पर ग्रीक भाषा में हमारे लिए इस्तेमाल किया गया. क्या है वो सब? बदलते जाते हैं. ठीक है.
As the caterpillar changes into a butterfly, so God changes us into his likeness, his image.
जिस तरीके से जो है वो तितली बदलती जाती है, उसी तरीके से हम लोग भी जो है मसीह के अंश में, उसके रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं.
But there's only one cocoon, one oven that God uses to change us.
और एक ही कोकून है या एक ही वो चीज है जिसके माध्यम से परमेश्वर हमें बदलता है.
And that oven, that cocoon is looking at the glory of the Lord.
और वो तब होता है जब हम परमेश्वर की महिमा की ओर एक तक होके देखते रहते हैं.
And the verse says, looking carefully or beholding like in a mirror, gazing intensely.
और बाइबल हमें बताती है कि हम उस दर्पण में देखते हुए, ध्यान से देखते हुए जब अपने आप को बदलते हैं.
And friends, the mirror that we use to look at the glory of the Lord is the whole Bible.
और जो वो दर्पण है जिसमें हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा को, तो वो परमेश्वर का पवित्र वचन है जिसमें हमें वो दिखाई देते हैं.
This is why the Apostle Paul would say, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified.
और इसी के बारे में पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में जब आऊंगा तो मैं केवल मसीह को छोड़कर के और उसके क्रूस को छोड़कर के किसी और बात को देखने की, चाहने की इच्छा नहीं करूंगा.
But remember, the Apostle Paul was a Pharisee of Pharisees.
और वो जो है आपको पता होगा पौलुस प्रेरित जो है फरीसियों में से था, फरीसियों का फरीसी था.
That means he was a well-trained Bible student.
इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है बाइबल में बहुत ही प्रशिक्षित व्यक्ति था.
The Pharisees would have memorized the first five books of the Bible, the books of Moses.
और फरीसी जो है मूसा की पहली पांच पुस्तकों को कंठस्थ कर लेते थे.
Paul even says he was trained under one of the best teachers, Gamaliel.
पौलुस ये भी कहता है कि वो उस समय के सबसे अच्छे प्रवक्ता या शिक्षक के अंतर्गत सिखाया गया था.
So when Paul said, I determined to know nothing except for Jesus Christ and Him crucified, did he forget all of his other teaching?
और वो कहता है पौलुस कि मैं मसीह के क्रूस को छोड़कर के और कुछ सीखने का, देखने का प्रयत्न नहीं करूंगा. तो इसका मतलब क्या ये है कि वो दूसरी शिक्षाओं को भूल गया?
No, he didn't forget the Bible and only talk about Jesus. He learned that to talk about Jesus accurately, you talk about him from the whole Bible.
और इसका मतलब ये हुआ कि वो भूला नहीं, लेकिन परमेश्वर के पूरे बाइबल को पढ़ते हुए भी उसको मसीह का जो महिमा थी वो दिखाई देती थी.
Okay, so friends, let's look at one more passage to lay our foundation.
तो एक और चीज हम देखेंगे जिससे कि हम अपने एक बुनियाद बना सकें हमारे जो सरमन है उसकी.
John chapter
5. यूहन्ना का पांच अध्याय.
In John chapter 5, Jesus is showing his deity, that he is God.
और योहन्ना 5 अध्याय में यीशु मसीह अपनी दिव्यता को दिखा रहे हैं कि वो परमेश्वर है.
In the chapter, Jesus uses 5 proofs, 5 evidences that he is God.
और यहाँ पर 5 प्रमाण दिए गए हैं इस बात के कि यीशु मसीह परमेश्वर है.
The last evidence he uses is the Bible.
और जो अंतिम प्रमाण है वो पवित्र बाइबल दिया गया है.
Let's read carefully verses 39 to 47.
और 39 से लेकर के 47 पद तक 5 अध्याय का देखेंगे.
तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है. फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते. मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं. मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते. यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे. तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है ही नहीं से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा. तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है. परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे?
आमीन. थैंक यू. All right, another surprise test.
और एक और अचम्मा आप लोगों को अचम्मे में डालने वाला टेस्ट लिया जाएगा.
Okay, in this passage, Jesus is speaking to the Jews.
इस गद्यांश में यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे हैं.
If you just look at verse 18, you can see that.
और अगर आप सिर्फ 18 पद देखें तो आपको वो मिल जाएगा.
Okay, in verse 19 says he was saying to them, so speaking to the Jews.
और 19 पद में लिखा हुआ है कि वो उनसे बात कर रहा था, इसका मतलब है कि वो यहूदियों से बात कर रहा था.
Okay, so I'm giving you part of the answer to your test.
तो मैंने थोड़ा सा आपको क्लू दे दिया है टेस्ट में से.
Yeah, the part I'm giving you is that Jesus is talking to the Jews.
और यीशु मसीह जो है यहूदियों से बातें कर रहे हैं, ये इन्होंने बता दिया.
Okay, the part that you must answer is, did they want eternal life? Did they want to go to heaven when they died?
तो क्या यहूदी लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं जब वो मर जाएंगे? क्या ये बाइबल में लिखा हुआ है?
Verse 39.
तो 39 पद में आप देख सकते हैं क्या उनकी स्वर्ग में जाने की इच्छा है.
It tells us why they studied the Bible.
और ये बताता है कि वो बाइबल क्यों पढ़ते हैं.
You search the scripture because you think that in the Bible you will find eternal life.
और आप बाइबल पढ़ते हो इसलिए क्योंकि ताकि आपको अनंत जीवन मिल सके.
So we can see that these people did not want to go to hell when they died. So they were diligently studying the Bible.
तो ये लोग जो हैं नरक में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए बड़े ध्यान से वचन को पढ़ रहे थे.
They wanted to have eternal life.
और वो अनंत जीवन चाहते थे.
So they applied themselves to the scripture.
तो वो अपने आप को इन वचनों में खो देते हैं.
But Jesus tells them they failed to understand what the Bible is about.
लेकिन प्रभु यीशु उनको कहते हैं कि तुमको वो बात समझ नहीं आई जिसके लिए बाइबल लिखी गई है, या इसका उद्देश्य तुम्हें समझ नहीं आया.
Now many of these people probably knew the Bible better than most of us, maybe better than all of us.
और हो सकता है ये जो उस समय के यहूदी थे हम में से अधिकतर से या सबसे बढ़ करके बाइबल जानते हो, बाइबल की बातें जानते हो.
Now I want you to focus carefully on verse 46.
और 46 पद मैं चाहता हूँ कि आप अब ध्यान से देखें.
Let's read that verse again.
46 पर ध्यान से पढ़ेंगे.
क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में.
46. यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से, केवल उसी ने पिता को देखा है.
Amen. Now,
chapter
5, verse. Oh, your wife was correct.
Chapter 5 and 46. Okay.
5:46.
क्योंकि यदि मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है.
Okay. Now, remind me again which books of the Bible Moses wrote.
और फिर से बताइए कि मूसा ने कौन सी पुस्तकें लिखी बाइबल की.
Yeah, the first five.
आपको हिंदी में याद भी है वो.
So, Good. It's good to know the books of the Bible, friends.
बड़ी अच्छी बात है बाइबल के किताबों को याद करना.
Okay, we teach our children little songs so that they can remember the books of the Bible.
और अंग्रेजी में कुछ गीत हैं ऐसे जिससे कि वो पुस्तकों के नाम याद कर सकते हैं.
Okay, but notice, Jesus says in verse 46.
और प्रभु यीशु यहाँ पर 46 पद में कहते हैं.
That the books Moses wrote, he wrote them about Jesus.
और प्रभु यीशु कहते हैं कि मूसा ने जो पुस्तकें लिखी वो यीशु मसीह के बारे में लिखी या मेरे बारे में ही लिखी.
So according to Jesus, Genesis is about Jesus.
तो प्रभु यीशु के अनुसार उत्पत्ति की पुस्तक किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में.
According to Jesus, Exodus is about Jesus.
और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार निर्गमन की पुस्तक किसके बारे में है?
Shall we continue? According to Jesus, Leviticus is about Jesus.
और लेवी व्यवस्था भी प्रभु यीशु के अनुसार
When you read Deuteronomy,
और जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं,
Jesus says that that book is about Jesus.
वो यीशु कहते हैं कि वो भी मेरे बारे में है.
And Leviticus is about Jesus.
और लेवी व्यवस्था भी प्रभु यीशु के बारे में.
Okay, so we've laid the foundation that the Bible is mainly about the gospel and the glory of Jesus Christ.
तो हमने वो बुनियाद डाल दी है कि हम लोग इस बात को समझ सकें कि बाइबल जो है मुख्य रूप से परमेश्वर के सुसमाचार और परमेश्वर के महिमा के बारे में है.
And what we want to do in the rest of our conference together is look at John chapter 1 to see the gospel and glory of Jesus Christ.
और हमारा जो बाकी का समय बीतेगा कॉन्फ्रेंस में तो हम चाहते हैं कि यूहन्ना 1 में से हम देखेंगे कि उसका सुसमाचार और उसकी महिमा.
What time is our lunch break?
One.
Okay, so we have 20 minutes and let's just get an introduction to the gospel and glory of Jesus from John 1.
तो आइए हम यूहन्ना का सुसमाचार खोल लें अध्याय 1. योहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 और वहां से हमें थोड़ा परिचय हो जाएगा मसीह का सुसमाचार और उसके महिमा के बारे में.
Okay, for a summary, we could just read verse 14.
और सारांश लेने के लिए या निचोड़ निष्कर्ष लेने के निकालने के लिए केवल 14 पद पढ़ लेंगे हम लोग. 1:14.
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया.
Okay.
और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा.
Thank you, brother. I don't know Hindi, so I thought you were finished. I want you to fix your eyes on the word glory.
और मैं चाहता हूं कि आप जो है इस शब्द पर ध्यान दें जो है महिमा.
We saw his glory.
हमने उसकी ऐसी महिमा देखी.
Can you say, like the Apostle John, that you have seen his glory?
क्या आप प्रेरित यूहन्ना के जैसे ही कह सकते हैं कि आपने भी उसकी महिमा को देखा है?
The verse says that he, the word, became flesh.
और वचन कहता है कि वह देहधारी हो गया.
So we know that the verse is talking about the incarnation, the earthly life of the Lord Jesus.
तो ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह के अवतार के बारे में बताता है कि वो पृथ्वी पर कैसे आ गया.
And it was in his flesh that John, one of Jesus' apostles, saw his glory.
और उस देह में प्रेरित यूहन्ना ने उसकी महिमा को देखा.
Do you remember how many apostles remained with Jesus when he was being crucified?
और क्या आपको याद है कि जब यीशु मसीह को क्रूस दिया जा रहा था तो कितने प्रेरित वहां पर जिंदा थे?
As Jesus was being crucified, were all 12 apostles there with him?
क्या 12 के 12 वहां पर थे जब उनको क्रूस
पर चढ़ाया गया? Were 6 of them there?
क्या 6 थे वहां पर?
One. Which one, brother?
John.
John, who wrote this gospel.
यूहन्ना था वहां पर जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और उसी ने यीशु समाचार लिखा है.
I remind you of that because the gospel is the main way we see the glory of God.
और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर की महिमा को देखने का एक रास्ता है.
Okay, let me just have the joy of preaching to you again the gospel.
और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है ये सुसमाचार के को सुनाने में आप लोगों को.
If someone asks you, what is the gospel? Or how may I be saved? Or how do you become a Christian? You shouldn't tell them about you. You should tell them about Christ.
तो अगर कोई आदमी आपसे भाई बहन पूछता है कि कैसे वो उद्धार पा सकता है तो आपको जो है अपने बारे में नहीं बताना है बल्कि यीशु मसीह के बारे में उसके इसका जो सुसमाचार है उसकी जो महिमा है उसके बारे में बताना है.
ओके, इन ब्रीफ दिस इज द गॉस्पल.
छोटे शब्दों में यही सुसमाचार है.
द गॉस्पल इज द गुड न्यूज दैट देयर इज वन एंड ओनली वन गॉड.
और जो सुसमाचार है वो एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि केवल एक ही परमेश्वर है.
द वन गॉड एग्जिस्ट्स इन थ्री पर्संस.
और वो जो एक परमेश्वर है वो उसके तीन व्यक्तित्व हैं.
वर्स 1 टॉक्स अबाउट द वर्ड बीइंग गॉड एंड द वर्ड बीइंग विथ गॉड.
और यहाँ पर जो पहला पद है वो वचन के बारे में बताता है और परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था उसके बारे में बताता है.
But we're not talking about two gods or three gods or like the Hindus, millions of gods.
और हम यहाँ पर एक दो तीन के ईश्वरों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या हिंदुओं के जैसे जहाँ पर बहुसंख्यक ईश्वर होते हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं.
The Bible teaches clearly there is one God who exists in three persons.
पवित्र बाइबल बताती है कि हम एक ईश्वर की बात कर रहे हैं और जो तीन व्यक्तित्व में हमें मिलता है पाया जाता है.
God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर पुत्र.
Not three gods.
और तीन ईश्वर नहीं किंतु एक ईश्वर.
Deuteronomy says the Lord your God is one.
और डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है कि तेरा परमेश्वर एक ही है.
Now I want you to think as best you can all the way back to the time of Adam and Eve.
और मैं चाहता हूं कि क्या आप मेरे साथ सोच सकते हैं आदम और हव्वा का जो समय था उसके बारे में.
In fact, I want you to go beyond that.
और मैं चाहता हूं कि दरअसल मैं चाहता हूं कि आप और उससे भी पहले जाएं.
I want you to go back before creation.
और सृष्टि से पहले के बारे में सोचना चाहता हूं कि आप सोचें.
In your mind, as best you can, I want you to go back to eternity past. Just continue to go back as far as your mind will let you.
और जो आदि काल है उसके बारे में आप सोचें सृष्टि से पहले का.
Okay, now I want you to take that amount of time and double it.
और फिर आप उस समय को सोचें और फिर उसको दोगुना कर दें अपने दिमाग में.
Now I want you to take that amount of time and multiply times 1 lakh.
और फिर उसके बाद में उस समय को आप जो है 100,000 से गुणा कर दें.
And if we continue to go and go, smoke will eventually come out of our ears.
और अगर हम वो गुणा करते ही रहेंगे तो हमारे कान से धुआं निकल जाएगा. इतना दिमाग उसमें ऊर्जा चाहिए.
But friends, the Bible teaches that from eternity, with no beginning, God existed.
परंतु पवित्र बाइबल मित्रों बताती है कि आदिकाल से अनादिकाल से हमारा परमेश्वर जो है सर्वोपस्थित है.
Now, God decided to create everything that exists.
और परमेश्वर ने ये जो चीजें हमें दिखाई देती हैं ये सारी इनका निर्माण करने की सोची.
Did he do it because he was bored or because he was lonely?
और क्या परमेश्वर ने ये सारी चीजें क्यों बनाई? क्या इसलिए कि वो उबाऊ हो रहे थे या वो अकेले थे?
Is that why he created?
क्या इसलिए बनाया उसने?
No. He enjoyed his own fellowship with himself forever. He needed nothing.
और उसने इसलिए बनाया क्योंकि वो ताकि वो आनंद ले सके अपनी उपस्थिति का सदाकाल के लिए.
God created everything that exists for his own glory.
और परमेश्वर जितनी भी चीजें हैं संसार में उन सबको इसलिए बनाया ताकि वो उनसे अपनी महिमा ले सके.
That is so that his creation would glorify him, enjoy him, honor him, worship him.
उसकी जो सृष्टि है उसका आदर करेगी, उसकी महिमा करेगी और उसका आनंद लेगी.
Now, when God created our first parents, he created them innocent, in a state of perfection.
और जब परमेश्वर ने हमारे प्रथम माता पिता को बनाया तो उसने उन्हें संपूर्ण बनाया था.
Adam and Eve enjoyed fellowship with God, they enjoyed fellowship with one another, they enjoyed fellowship with the creation.
और उन्होंने आदम और हवा ने परमेश्वर के साथ आनंद लिया संगति का और आपस में भी और सृष्टि के साथ भी.
And in an act of insanity, they followed the serpent's suggestion and they rebelled against God.
और एक ऐसा समय आया कि जब उन्होंने जो सर्प था उसकी बातों पर विश्वास किया और परमेश्वर को उन्होंने त्याग दिया.
Adam and Eve's rebellion was the same thing as telling God, I want to be God. You no longer deserve to be God.
और ये ऐसा विद्रोह था जैसे कि आप हे परमेश्वर आप परमेश्वर नहीं हैं परंतु मैं हूं.
And instead of condemning them, instead of sending them to hell immediately,
और उनको तुरंत ही नरक भेजने के बजाय या उनको दोषी ठहराने के बजाय,
God gave promises that he would send a savior for sinners like that.
उनकी उन्हें प्रतिज्ञाएं दी कि वो एक उद्धारकर्ता भेजेंगे ताकि उनको बचाया जा सके.
The Bible says that every person born after Adam and Eve is infected with the same sin of our first parent.
और पवित्र बाइबल हमें बताती है कि आदम और हव्वा के बाद जितने लोग पैदा हुए हैं वो उस पाप से ग्रसित हैं या उनको वो लगा हुआ है.
We're born wanting to be our own God.
और इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मैं खुद ही ईश्वर हूँ अपने आप में.
And not only are we born in that condition, sinful, we also commit sin. We actively sin.
और हम केवल पैदा ही नहीं होते और हम देखते नहीं बल्कि हम पापों में जीते हैं और हम पाप करते भी हैं.
And instead of sending us all to hell, which would be fair, God promised mercy.
और परमेश्वर ने हमें सीधा नरक भेजने की बजाय हमारे ऊपर में दया बरसाई.
Instead of condemning us, God sent His only Son.
और परमेश्वर ने हमें दोषी ठहराने के बजाय अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेज दिया.
The same one who existed with Him from all eternity.
और उस पुत्र को भेज दिया जो उसके साथ में अनंत काल से रहता था.
God sent His Son, the Lord Jesus Christ, to this earth.
और परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया
born through the womb of the Virgin Mary
ताकि वो कुमारी मरियम से के गर्भ से पैदा हो
and for his entire lifetime Jesus
और उसके संपूर्ण जीवन में यीशु मसीह
Jesus lived the life before the face of God that you should have lived
और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सामने ऐसा जीवन जिया जैसा कि शायद हमें और आपको जीना चाहिए था
He always honored, glorified, worshipped God.
और उसने सदा परमेश्वर की महिमा की और उनको आदर किया और उनकी बड़ाई की
He always did what pleased his father.
और उन्होंने सदा वो कार्य किए जिनसे उनका पिता प्रसन्न हुआ
Then he took that perfect life of obedience.
और फिर उन्होंने जो है आज्ञाकारिता का जीवन ले लिया
And he willingly gave himself as a sacrifice for sinners like us.
और फिर उन्होंने जो है जानबूझ करके हमारे लिए पापियों के लिए बलिदान दे दिया आज्ञाकारिता में
The worst part about the crucifixion of Jesus was not what men did to him.
और जो सबसे विभत्स घटना थी जो सबसे खराब थी वो ये नहीं थी कि उसके क्रूस के समय में कि लोगों ने उसको दुखी कर दिया
The Bible teaches that the Lord put on Jesus the iniquity, the sin of us all.
असल में बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता ने को ये भाया कि वो संपूर्ण मानव जाति के पापों का भार उसके ऊपर में रख दे
The Bible teaches that God condemned Jesus. He treated Jesus like a curse when he was on the cross.
बाइबल ये बताती है हमें कि उसको श्राप बना दिया गया उस समय में क्रूस पर
The Bible teaches that Jesus endured the wrath of God that we deserved.
और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता का वो क्रोध सह लिया अपने ऊपर में जिसके भागीदार हम लोग थे
He died as a perfect sacrifice for sinners like us.
और हम जैसे पापियों के लिए वो शुद्ध बलिदान होकर के बलिदान हो गया
And we know that God accepted his sacrifice.
और हमें पता है कि परमेश्वर पिता ने उसके बलिदान को ग्रहण किया
We know that the sacrifice of Jesus was enough for our forgiveness.
और हमें यह भी पता है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो बलिदान था वो पर्याप्त था
And the way we know this is because 3 days after he died, God raised him from the dead.
और हमें ये बात इस बात से पता चलती है कि जब यीशु मसीह मरे तो उनको जो है तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने जीवित कर दिया
God the Father exalted the risen Lord Jesus to his right hand in heaven.
और फिर परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जीवित किया और अपने दाहिने हाथ रखा
The Bible promises that this same Jesus will come again and rescue his people forever.
और बाइबल हमें बताती है प्रतिज्ञा करती है कि यही यीशु अपने लोगों की सुरक्षा करेगा आकर के
The Bible teaches that if anyone will turn from their sin and put their faith in that Jesus, he will save them.
और अगर बाइबल बताती है कि अगर कोई भी आदमी उसी यीशु में श्रद्धा रखेगा आस्था रखेगा तो वो उसको बचाएगा उसका उद्धार करेगा
This is the gospel. This is the good news of our salvation.
और यही सुसमाचार है यही उद्धार का रास्ता है
The gospel is the good news of what God has done in Christ to save sinners.
और जो सुसमाचार है वो यही है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में पापियों के लिए क्या कर दिया है
And this gospel shows us the greatest display of the glory of God.
और ये जो सुसमाचार है उसकी महिमा को दर्शाता है.
Turn with me to John chapter 12.
और यूहन्ना का 12 अध्याय देख लीजिए आप.
In John chapter 12, verse 27, Jesus was very troubled, very burdened.
और 12 में जो है यीशु मसीह बहुत ही दुखी थे, परेशान थे.
He was troubled as he thought about his death on the cross.
और वो इसलिए दुखी थे क्योंकि वो अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहे थे.
Let's read verse 27.
और 27 पद देखेंगे.
अब मेरा जी व्याकुल हो उठा है, क्या मैं यह कहूँ हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी अभिप्राय से इस घड़ी तक पहुँचाऊँ.
Even though he knew it would be exceedingly painful.
और हालांकि उनको पता था कि जो उनका जो बलिदान होगा वो बहुत ही परेशान करने वाला है, दुख उठाने वाला है.
Even though he was very troubled about the crucifixion.
हालांकि वो क्रूस के दिन के बारे में बहुत ज्यादा शोकित था, बहुत परेशान थे.
Jesus said, "Should I ask the Father to spare me, to save me from that death?"
यीशु मसीह कहते हैं कि क्या मैं अपने पिता से मांग सकता हूं कि पिता मुझे बचा ले उस दिन में?
He said, "No, this is the purpose for which I came."
असल में इसी अभिप्राय के लिए मुझे भेजा गया था.
Now notice verse 28.
और 28 पद को देखिए आप.
Instead of asking to be saved from the cross, Jesus prays, "Father, glorify your name."
और अपने आप को बचाने की बजाय, अपने आप को सुरक्षित रखने की बजाय, क्रूस से प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता अपने नाम की महिमा कर.
So I want you to see that Jesus sees the cross as a way to glorify God.
तो हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस को एक माध्यम देखते हैं जिसके माध्यम से पिता की महिमा होती है.
We've already said the Bible is mainly about Jesus.
और हमने पहले ही बता दिया है कि बाइबल जो है मुख्य रूप से यीशु मसीह के बारे में है.
We said it's mainly about his gospel and his glory.
और हमने ये भी कहा है कि वो सुसमाचार और उसकी महिमा के बारे में है.
Now we see that the gospel is mainly about the glory of God.
और अब हम देखते हैं कि जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, वो उसकी महिमा के लिए है मुख्य रूप से.
Notice how God the Father responds to Jesus.
और यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर पिता कैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रतिव्यक्ति करते हैं.
Read verse 28.
और 28 पर देखिए आप लोग पढ़ करके.
हे पिता अपने नाम की महिमा कर, तब ये आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा.
So when Jesus says to his Father, "Glorify your name."
और जब यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता अपने नाम की महिमा कर,
It's as if the Father says, "That is a wonderful idea."
और ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही अद्भुत विचार हो.
The Father says, "That's what I have been doing, and that's what I will continue to do."
और पिता कहते हैं कि यही तो चीज है जिस जो मैं करता आया हूँ और यही मैं निरंतर करता रहूंगा.
So when God the Son and God the Father think about the gospel, the cross, they think mainly about the glory of God.
तो आप जो है परमेश्वर के सुसमाचार में, उसके क्रॉस में, पिता और पुत्र में देखिए कि वो परमेश्वर की महिमा को ही खोजते हैं उसमें.
Notice in verse 29 that the people standing around did not understand.
और 29 में देखिए 29 में कि जो लोग वहां पर खड़े हुए थे वो समझते नहीं हैं.
In verse 29, they said it sounded like thunder.
और वहां पर लगा कि जैसे बादल गरजा है.
Now let's imagine a terrible storm came into the mountains.
और आप सोच ऐसा सोचिए, कल्पना कीजिए कि जैसे पहाड़ में एक बड़ा तूफान आया है.
Let's imagine that there was loud thunder.
और एक बड़ा बिजली की चमकी.
I've never heard anyone say when it thundered, "Excuse me, what did you say?"
और मैंने कभी नहीं सुना किसी आदमी को जब बादल गरजता है, जोर से बिजली कड़कती है, कि तो कोई कहे कि क्या कहा आपने. बादल की तरफ आवाज करके ऐसा दोबारा सुनना चाहे.
Thunder doesn't sound like speech. Thunder doesn't sound like communication.
जो बिजली का जो गर्जन है वो जो है कम्युनिकेशन या संवाद जैसा नहीं सुनाई देता.
That's what's happening here. The people cannot understand.
और जो लोग हैं वहां पर उस समय में वो समझ नहीं पा रहे हैं.
They cannot understand that the cross is mainly about glorifying God.
और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो सुसमाचार है वो मुख्य रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए है.
Our salvation is not even mainly about us.
और हमारा जो उद्धार है, ध्यान से सुन लीजिए, हमारा जो उद्धार है वो भी मुख्य रूप से हमारे लिए नहीं है, हमारे बारे में नहीं है.
The gospel is not the good news that God will make everything about you.
और सुसमाचार वो नहीं है कि वो हमारे बारे में, परमेश्वर सारी बातें हमारे बारे में सोच रहे हों.
The gospel is the good news.
गॉस्पल जो है, सुसमाचार जो है,
that through the death and resurrection of Jesus,
कि प्रभु की, यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के माध्यम से,
God will set you free from self-love,
ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह में आजाद हो जाएं, अपना जो अपने प्रति प्यार करते हैं उससे.
God will set you free and forgive you for wanting to be your own God.
और परमेश्वर आपको माफ करेंगे और क्षमा देंगे ताकि आप अपने ही ईश्वर ना बन जाएं.
And he will let you join him in glorifying himself.
और फिर आप जो है उसकी तरफ आ जाएंगे, परमेश्वर की ओर आ जाएंगे, ताकि आप परमेश्वर के साथ में जुड़ सकें उसकी महिमा करने में.
So if you have never turned to Christ, maybe the young people, maybe the older people, if you've never yet turned to Christ to be saved for the glory of God, then I encourage you, turn from your sin and believe on the Lord Jesus Christ.
तो चाहे जवान हो चाहे बड़े हो, अगर आपने कभी भी सुसमाचार का ये नजरिया नहीं रखा है कि हमारा उद्धार परमेश्वर में, यीशु मसीह में, प्रभु की महिमा के लिए है, तो आप प्रचारक बोल रहे हैं कि आप अपने आप को सुधारें और उद्धार का जो सही नजरिया है प्रभु की महिमा के लिए उसको अपनाएं, विश्वास करें.
Amen. Okay, so we've laid the foundation that the Bible and the gospel is mainly about the glory of God.
और जो बाइबल है और जो सुसमाचार है, हमने वो मुख्य आधारशिला या बुनियाद रख दी है उसकी, ये सारी बातें जो है परमेश्वर की महिमा को के लिए हैं.
So in our remaining sessions, now we're prepared to look at the gospel and the glory of Jesus from John chapter 1.
तो हमारे जो बाकी के सेशंस होंगे उनमें जो है हम परमेश्वर, सुसमाचार और उसकी महिमा को देखते जाएंगे.
Okay, let's pray together. Amen.